ஓம் சாந்தி. பாபா கே ஹம் சபி சங்கம் யுகி பாக்யவான் ஆத்மாயே, பாபா கி பாலனா மே வரதானோ கி சத்ர சாயா கே நீச்சே பல் ரஹே ஹே. ஹம் சப்கோ அம்ரத் வேலே ஹி பாபா துவாவோ கி பௌச்சார் கர் தேதா ஹே, துவாவோ கா ஹாத் சிர் பர் ரக் தேதா ஹே. யே துவாயே ஏக் பஹுத் தீவ்ர கதி கா ராக்கேட் ஹே. உடத்தி கலா மே ஜானே கே லியே, ஊஞ்சி ஸ்தித்தி பனானே கே லியே, மீட்டே பாபா கி அப்னே லௌகிக் அலௌகிக் பரிவார் கி சப் கி துஆயே சாஹியே. ஜிஸ் ப்ராஹ்மண ஆத்மா நே இஸ் பாத் பர் தியான் தியா ஹே, உன்கே மார்க் மே ஆனே வாலி கை படி படி சமஸ்யாயே பி பஹுத் ஜல்தி கிராஸ் ஹோ ஜாதி ஹே, வோ தக்தா ஔர் ருக்தா நஹீ ஹே. இஸ்லியே ஆஜ் இஸ் விஷய கோ சுனா ஹே, லேகின் உஸ்கே பஹலே ஹம் சப் பாபா கி மஹாவாக்யோ கா கஹன் அத்யயன் ரோஜ் கர்தே ஹே. பாபா நே ஹம் சப் கோ சார் பிரகார் கா புருஷார்த் சுனாயா ஹே. கை பச்சே புருஷார்த் சப்த கோ சுன் கர்கே டென்ஷன் மே ஆ ஜாதே ஹே, பஹுத் மெஹனத் கர்தே ஹே. கையோ கோ தோ சிர் மே தர்த் ஹோனே லக்தா ஹே, ஆத்மா சமஜ்னா தேஹ் சே டேடே சோனா படி மெஹனத் லக்தி ஹே. ஔர் ஜோ கார்ய வியவஹார் மே ரஹதே ஹே உன்கே லியே படே பிரஷ்ன மன் மே ஆதே ஹே, கி பாபா தோ கஹதா யே சஹஜ யோக ஹே, சஹஜ மார்க் ஹே, லேகின் பஹுத் மெஹனத் ஹே. சப்கே பீச் மே ரஹ கர்கே, கலியுகி வாதாவரண் மே ரஹ கர்கே, ஐசே லோகோ கே சாத் ரஹ கர்கே அப்னி ஸ்தித்தி பனானா, யே பஹுத் மெஹனத் கா காம் ஹே, சஹஜ நஹீ ஹே. சஹஜ லக்தா ஹே, மெஹனத் லக்தி ஹே. பாபா தோ கஹதா ஹே பச்சே தும் மேரே மொஹப்பத் மே சமா ஜாவோ, மெஹனத் கதம் ஹோ ஜாயேகி. லேகின் ஃபிர் பி ஐசே தோ ஹாத் உட்வாயேங்கே தோ சப் சஹஜ மே ஹாத் உட்டா தேங்கே, லேகின் ஜப் பர்சனல் மில்தே ஹே தோ பதாதே ஹே கி யே மெஹனத் ஹே, ஐசி மெஹனத் ஹே, க்யா கரூ கைசே கரூ. இஸ்லியே ஆஜ் ஆப்கோ மே சார் பிரகார் கா புருஷார்த் பதாதா ஹூ. பஹலே பஹலா ஹே யதார்த் புருஷார்த் க்யா ஹே. யதார்த்த புருஷார்த் ஜிஸ்கே லியே பாபா நே ஹம் சப்கோ கஹா ஹே, ஆத்மா புருஷ ஹே, இஸ் தன் பர் இஸ் ரத் பர் விராஜமான் மே புருஷ, மே ஆத்மா மாலிக் ஹூ. மாலிக் சமஜ் கர்கே கர்ம இந்திரியோ சே கர்ம கரானா ஔர் கர்த்தாபன் கே பான் சே நியாரே ரஹனா, கராவன் ஹார் பாபா ஆப்னே கரா லியா, மேரா பாக்ய பனா தியா, இஸ்கோ யதார்த்த புருஷார்த் கஹா ஜாதா ஹே. யதார்த்த புருஷார்த் கே அந்தர் பஹுத் அச்சி சாட்சி த்ருஷ்டா ஸ்தித்தி ரஹதி ஹே. அகர் சாட்சி த்ருஷ்டா ஸ்தித்தி மே ரஹனே கா அப்யாஸ் நஹீ ஹே தோ மன் கை பிரஷ்னோ மே உலஜ் ஜாதா ஹே. ட்ராமா கி ஹர் சீன் கோ சாட்சி த்ருஷ்டா ஹோ கர்கே தேக்னா ஔர் த்ரிகால்தர்ஷி ஸ்தித்தி மே ரஹ கர்கே ஹர் கர்ம கர்னா, பார்ட் ப்ளே கர்னா, யதார்த்த புருஷார்த்தி கி குவாலிட்டி ஹே, நிஷானி ஹே. ஆப் சபி நே ஆஜ் சமாச்சார் சுனா, ஹோ சக்தா ஹே கல் கையோ கே பாபா மிலன் கே பாத் வாபஸ் கே டிக்கட் ஹோங்கே, क्या होगा, कैसे होगा, बाबा कल नहीं आएगा, परसों आएगा, हलचल में तो नहीं आए? जो हलचल में आए हैं थोड़ा सा हाथ उठाओ। नहीं आए कोई भी? है, है। अच्छा, यहाँ भी बहने भी हैं? बहने अचल हैं। भाइयों के टिकट होंगे, वापसी की रिजर्वेशन होगी, अब क्या करना, कैसे करना? बाबा तो कहता है बच्चे नथिंग न्यू, ड्रामा में हर सीन कई रहस्यों से भरी हुई होती है। वैसे दादी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक, एक महीने से बॉम्बे में थी, लेकिन दो तीन दिन से थोड़ा सा सर्दी फिर से आई। कल आना था, 21 तारीख बताया पहले आऊंगी। डॉक्टर्स ने कहा दादी एक दिन और रेस्ट कर लो। आज आना था तो आज भी छुट्टी नहीं मिली, फ्लाइट भी आ गई। तो दादी जी ने कहा कि कल चलेंगे, परसों बाबा आएगा। दादी जी ने खुद सामने से बोला। तो ड्रामा में कुछ राज होते हैं, क्या राज है वो तो बाद में खुलते हैं, इसलिए कोई प्रश्न नहीं करना। जितना सहज हो सकता है, बाबा से मिलन मनाने आए हो, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर टिकट का होगा कर लेना। अगर जानना ही जरूरी है तो जाएंगे, तो भी मिस नहीं होगा। बाबा तो वतन से आपकी लगन को देखता है, आपको शक्ति और सकास दे देगा, वरदान भी दे देगा। चिंता नहीं करना, बहुत खुशनुमा स्थिति में रहना। इसलिए ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर के देखना, ये है यथार्थ पुरुषार्थी आत्मा की निशानी। हलचल में आ जाना, उलझ जाना, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे प्रश्नों में, तो प्रसन्न चित्त स्थिति नहीं रहती। प्रश्नों में उलझना माना प्रसन्नता को गायब कर देना। हम सब बाबा के बच्चों को बाबा ने वरदान दिया है सदा संतुष्ट और सदा प्रसन्न चित्त भव। तो इसलिए यथार्थ ड्रामा के ज्ञान को समझकर, यथार्थ पुरुषार्थ के आधार से इस बात में भी विजयी बन जाना। सदा न्यारे और प्यारेपन की स्थिति, निस्वार्थ और निर्दोष स्थिति, अनासक्त स्थिति, इन पर विचार करना। जो शब्द मैं यूज कर रहा हूँ ये बाबा के ही शब्द हैं। यथार्थ पुरुषार्थी आत्मा पुरुषार्थ करके उसके फल की इच्छा नहीं रखती, निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाला यथार्थ पुरुषार्थी कहलाता है। दूसरा है सर्वोत्तम पुरुषार्थी। सर्वोत्तम, सबसे उत्तम पुरुषार्थ क्या है? जो सोचना वही बोलना वही करना, कथनी और करनी में अंतर न दिखाई दे। कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, बोलना अलग है, चाल चलन अलग है, उसको सर्वोत्तम पुरुषार्थ नहीं कहते। सर्वोत्तम पुरुषार्थी माना एग्जाम्पल, जिसको देख करके सब फॉलो करें, उदाहरण मूरत। ऐसी स्थिति बनाओ जो आपको देख करके सबको प्रेरणा मिले कि देखो ये भी संसार में रह रहे हैं, ये भी प्रवृत्ति के अंदर रह रहे हैं, ये भी इतने सारे कार्य कर रहे हैं, फिर भी कितना निश्चिंत है, इनको कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं, कुछ भी हो जाए, पता नहीं किस चीज के बने हुए हैं, कोई भी प्रभाव जिस आत्मा पर न पड़े, कोई भी सीन जिसको हिलाए नहीं, ऐसी एग्जाम्पल आत्माएं सर्वोत्तम पुरुषार्थी कहलाती हैं। तीसरा कुछ समय से बाबा का एक शब्द आप सुन रहे होंगे, तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थ करो बच्चे, समय बहुत कम है, अचानक बहुत कुछ हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। क्या एक सेकेंड में ब्रेक लग सकती है? अगर संकल्पों को एक सेकेंड में ब्रेक लगाने की आदत बन गई, फुल स्टॉप, कुछ नहीं आगे सोचना है। जो बीती का चिंतन नहीं करता, जो आने वाली बातों की चिंता नहीं करता, जो वर्तमान पर फुल अटेंशन देता है, अच्छे से अच्छा मेरा आज का दिन बीते, वो है तीव्र पुरुषार्थी। बाबा ने कहा और उसने कर लिया, हो जाएगा, कर लेंगे, उसके पास ऐसे शब्दों की अविद्या होती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग तो वो करते हैं जो अलबेले हैं, जो आलसी हैं। तीव्र पुरुषार्थी आत्मा अलबेलेपन से और आलस्य से सदा मुक्त रहती है। सदा उसको ध्यान पर रहता है कि किसी भी घड़ी अंतिम घड़ी आ सकती है। दादी जी की क्लासेस सुनते हो, जानकी दादी आते आते अचानक बोल जाती, बाबा ले जाएगा, कब ले जाएगा, अचानक चले जाएंगे, तैयार हैं हम, बैठे हुए हैं। ये हैं तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं। पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने आप बाबा 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 अंदर से अनाहद मार्ग, अनाहद शब्द चलता रहता है। किसी घड़ी भी बाबा ले जाए, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इतना एवर रेडी आत्माएं हैं। और उमंग, उत्साह, हिम्मत उनको देखने से ही लगता है कि इतनी बड़ी एज में कितनी हिम्मत है, कितना उमंग है, कितना उत्साह है, कितनी सेवाएं कर रही हैं। कभी नहीं कहेंगी हम बूढ़े हो गए, हमको अभी रेस्ट दे दो, नहीं क्लास का टाइम हुआ, मुझे क्लास में जाना है, अभी विदेश जाना है, अभी ये जाना है। तो हमारी दादियां हमको क्या प्रेरणा दे रही हैं? तीव्र पुरुषार्थी बनो, सदा उमंग, सदा उत्साह, सदा हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। तो ये तीन प्रकार का पुरुषार्थ तो हम सब जानते हैं, यथार्थ, सर्वोत्तम और तीव्र। अब आज हम चौथे प्रकार के पुरुषार्थ की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कई ऐसे पुराने हिसाब किताब बीच बीच में निकलते हैं जिसमें अच्छे अच्छे महारथी भी हिल जाते हैं। लेकिन अगर उन्होंने शुरू से अंत तक सुख दिया है, सुख लिया है, सबको स्नेह और सहयोग दिया है, किसी भी आत्मा को कभी भी मन से भी दुख नहीं दिया, उन्हें बहुत दुआएं मिली हुई हैं, उनके पास दुआओं का बहुत स्टॉक है, सदा बाबा के आज्ञाकारी, सपूत, हाजी करने वाले, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले, कोई भी परवाह नहीं, एक बाबा दूसरा न कोई, बेफिकर बादशाह, आज्ञाकारी है, सपूत है, वफादार है, ईमानदार है, उसको दुआएं मिल रही बाबा की। और बड़ों की और बाबा की दुआएं हैं, हमने तो अपने जीवन में यही एक अनुभव किया है। अभी तक आज 45 साल की यात्रा संगम युग की बहुत श्रेष्ठ और उत्तम बीती है, जब से बाबा के बच्चे बने हैं। आज तक भी कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि मैं भी थक गया हूं, सदा उमंग, उत्साह, सदा बाबा की प्रेरणाएं और बड़ों की बहुत आशीर्वाद मिलती रही है। सिर्फ लक्ष्य शुरू से एक ही रखा कि इन बड़ों की जो भी वाणी हो, जो भी मुझे कहें, मुझे उसमें कभी भी क्वेश्चन नहीं करना, ये नहीं कहना ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा, उन्होंने कहा है माना, हो जाएगा, प्रश्न उठाया ही नहीं, मुझे नहीं आता, मेरे को पता नहीं है, मैं कैसे करूंगा, मैंने पढ़ाई नहीं किया है, मैंने ये नहीं किया है। उन्होंने कहा माना हुआ पड़ा है। इतना विश्वास रख करके शुरू से कोई भी सेवा मिली, बहुत छोटे छोटी सेवाएं भी यज्ञ की करनी पड़ी, किया बड़े प्यार से, करते रहे हाँ जी करते रहे, हाँ जी करते रहे, तो बड़ों की हाँ जी के पाठ से, बड़ों के आज्ञाकारी बनने से, इन देवियों की, इन बड़ों की दुआएं आत्मा को इतना स्वस्थ और निरोगी बना के रखती हैं, जो कभी भी मेहनत का अनुभव नहीं होता। कई बच्चों को बाबा के योग लगाने में बड़ी मेहनत लगती है। मैंने आज तक योग में मेहनत का अनुभव नहीं किया। सहज योगी जीवन है, जीवन ही योगी है, योग लगाने वाले नहीं। दादियों ने हमें यही सिखाया है कि योगी जीवन बना लो। ठीक है, एक दो घंटे का अभ्यास करना वो जरूरी भी होता है कि जिससे निरंतर रह सके, क्योंकि कई बार बाबा कहते हैं अगर एक मिनट भी बहुत पावरफुल बीज रूप की स्टेज पर बैठ जाओगे तो कई घंटे का आराम मिल जाएगा, थकान दूर हो जाएगी, रेस्ट का अनुभव होगा। भले दिन में रेस्ट नहीं मिले, रात को भी कम नींद हो, लेकिन जिस आत्मा ने एक मिनट के लिए भी इस देह से डिटैच होने का अभ्यास कर लिया, वो बहुत सहज रीति से थकान से मुक्त हो जाता, हल्का हो जाता, लाइट हो जाता। तो योग करना, समय प्रति समय अपने लिए समय देना वो जरूरी भी है। बीच बीच में इस देह से डिटैच होने का अभ्यास एक मिनट भी करेंगे तो कई घंटे तक उसका प्रभाव रहता है, इसलिए करना चाहिए। लेकिन जीवन ही योगी है, खाना पीना कर्म करना व्यवहार निभाना सबके बीच में रहते। बाबा से दिल का इतना प्यार है जो बाबा के सिवाय और कोई है ही नहीं, संसार ही बाबा है। तो जब बाबा को संसार बना लिया, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं, तेरा ही चिंतन करूं, तेरी ही बातें सुनूं और सुनाऊं, अगर ये दिल में छप गया है चिंतन वही है जो बाबा ने सुनाया है, योगी जीवन है। योग लगाने वाले नहीं, मेहनत करने वाले नहीं, सिर्फ ध्यान ये है कि बाबा की कभी भी आंख ऐसे न हो जाए, कहे मैं बच्चों को देखता नहीं हूं। कई बार ऐसे कहते था, मैं अगर देहधारियों से लगाव झुकाव है तो मैं उन बच्चों को देखता भी नहीं, ऐसे शब्द बाबा के आते हैं। ये भी एक बद्दुआ है, दुख दोगे तो, और शब्द आगे आता है, दुखी होके मरोगे। जो बाबा कहता मैं बद्दुआ नहीं देता हूं लेकिन समझ देता हूं। इस ब्राह्मण जीवन में हरेक अंडरलाइन करना, बाबा ने मुझे मास्टर सुखदाता बनाया है। हम सब सुख देवता हैं, कुछ भी हो किसी भी आत्मा को दर्द नहीं पहुंचाना, उसकी आह निकल गई तो बद्दुआ हो जाएगी। ऐसा ध्यान रखेंगे अगर कि मेरे कोई भी एक्शन, कोई भी कर्म, कोई भी बोल ऐसे न हो जो सामने वाली आत्मा, संबंध संपर्क में आने वाली, वो हमसे डिस्टर्ब होकर के बद्दुआ देने लगे। अगर कुछ गलत कर रही है तो उसका परिणाम वो खुद भोगेगी, मेरे कारण से वो दुखी न हो। अगर इतना ध्यान रखेंगे तो परिवार की बहुत अच्छी दुआएं मिल जाएंगी, और वो दुआएं समय पर साथ देती हैं, मदद करती हैं। अगर मेरे शारीरिक कोई प्रॉब्लम आई, इतने सारे ब्राह्मण परिवार की दुआएं मैंने ली हैं, सबको साथ दिया है, सहयोग दिया है, स्नेह दिया है, समय पर मदद की है, तो उनकी बहुत गुप्त दुआएं, भले कोई ऊपर से कहे या न कहे, लेकिन उनके दिल का स्नेह उस बीमारी को, आने वाले बड़े से बड़े कष्ट को, विघ्न को सहज समाप्त कर सकती है। ये हमारी दादियों का सबका अनुभव रहा है, उन्होंने इस बात को अंडरलाइन कराया है, ये सबकी दुआएं हैं। मुझे दर्द नहीं है कोई चीज का, भले बीमारी आई, भले कोई शरीर का हिसाब किताब आया है, लेकिन कभी भी उन्होंने, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन भी हुए, ये नहीं कहा आ मेरे दर्द हो रही है, नहीं, सबकी दुआएं हैं, सबकी दुआएं हैं। इसलिए कोई भूले चूके भी अगर एक बद्दुआ दे दे तो ग्रहण नहीं करो, कोई गलत बोल जाए स्वीकार कर लिया, दुखी हो गए। कई दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं। बाबा कहता बच्चे देते तो नहीं हो, अच्छी बात है, लेकिन लेते क्यों हो? अगर आपको नहीं अच्छी चीज लगती है तो नहीं ग्रहण करो, नहीं स्वीकार करो, लेकिन सोच लेंगे इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, इसको नहीं कहना चाहिए, इतना डिस्टर्ब हो जाते, इतना मूड खराब हो जाते, वो 10 लोगों को सुना करके और सारा वातावरण खराब कर देते। अगर वातावरण कोई खराब करता है तो दोषी एक तो है जिसने कहा, लेकिन जिसने वातावरण खराब किया उस पर 10 गुना बोझ चढ़ गया। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर कोई ऐसी बातें आपस में हो भी जाएं तो समाने की और सहन करने की शक्ति से उस बात को समाप्त करके वायुमंडल को खराब नहीं करना, बहुत अच्छी तरह से समझ जाओ। कोई हिसाब किताब चुकतू हो गया, फुल स्टॉप, मुझे सोचना नहीं है, जो होगा बाबा जाने। अगर मैं सही हूं और गलत मुझे कह रहा है, ये मुझे गलत सोच रहा है मेरे बारे में, तो भी अपनी स्थिति को डगमग होने नहीं दो। ज्ञानी आत्मा की निशानी है, अगर ज्ञान है तो उस ज्ञान से, उस समझ से अपनी स्थिति को बहुत अच्छे से अच्छा बना लो। बातें किसके सामने नहीं आती, परीक्षाएं किसके सामने नहीं आती, सबके सामने आती हैं। जो पक्के हैं, महावीर हैं, उनके आगे कितनी भी बड़ी बात आ जाए, वो तो बड़े से बड़ी बात को भी छोटा बना करके पार कर लेते हैं। और जो बेचारे कमजोर हैं, प्यादे हैं, वो तो छोटी बात को सोच सोच करके पहाड़ बना देते। कईयों की आदत होती है तिल जितनी बात को ताड़ जितना बना देते। ध्यान रखना, कोई भी बातें आए, डोंट केयर, ज्यादा नहीं सोचो, बाबा बैठा है। आप अपने श्रीमत की लकीर को उल्लंघन नहीं करना, बस बाबा साथी है। बाबा की दुआएं उस बच्चे पर हैं जो बाबा की श्रीमत पर मरने मिटने के लिए तैयार रहता है। बाबा उसको बहुत आशीर्वाद देता है। श्रीमत पर बच्चा चल रहा है, भले कोई शरीर के हिसाब किताब संबंधों के आए हैं, पार हो जाएगा। कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की तो सिर से उतरेगी गठरी पाप की। पाप की गठरी उतारने के लिए तो योग की भट्टियां करते हैं, तपस्या करते हैं। ठीक है, वो भी विधि है, लेकिन योग लगेगा। पाप अगर ज्यादा सिर पर है तो योग लगता ही नहीं। इसलिए ध्यान रखो, दुआएं ले लो, दुआएं दे दो, इतना दुआओं का स्टॉक भरपूर कर लो जो द्वापर में आपके मूर्तियों से लोगों को दुआएं मिलती रहे, आशीर्वाद मूर्ति दे रही है। संगम पर भरोगे तब तो दोगे। तो इसलिए ये संगम का समय दुआएं लेने और देने का है। सदा संतुष्ट रहना, सदा संतुष्ट करना, सदा प्रसन्न रह करके प्रसन्न रहना, ये है दुआएं लेने और देने का साधन। एक बहुत बड़ा बैलेंस, कहते हैं बैलेंस से ब्लिसफुल लाइफ बनती है, और जहां ब्लिसफुल लाइफ है वहां बहुत ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। बैलेंस एक बहुत बड़ी कला है, और हर एक भाई और बहनों को इस बात को अंडरलाइन करना जरूरी है कि कभी भी बैलेंस अप डाउन ना हो जाए। कभी कभी नशा चढ़ता है, दिन रात बाबा की सेवा में लग जाते, रचना रची परिवार है उसको भूल जाते। लोग कहते पता नहीं ब्रह्मा कुमारियां क्या सिखाती, ये तो घरबारी छुड़ा देंगी, विमुख कर देंगी और बदनामी होने लगती। अगर बैलेंस बना के रखा है, घर को भी देखा, परिवार को भी देखा, समाज को भी देखा, और बाबा को भी छोड़ा नहीं, उस पर भी पूरा ध्यान रखा, बैलेंस है, दोनों तराजू बराबर हैं, तो कभी कोई नहीं कहेगा ये गलत है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से भले ये जाते हैं ज्ञान में, योग में, क्लास में, सेवाओं में, लेकिन इनका परिवार बड़ा शांत सुखी व्यवस्थित है, वो भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, बहुत अच्छा बैलेंस है। दुआएं मिल रही हैं सबकी। अति हमेशा नुकसानकारक होती है, कोई चीज की भी अति। आप अति भूखा रहने शुरू कर दो, बीमार पड़ जाओगे, अति खाना खाने लगो एकदम भारी हो जाओगे, अति नींद करोगे और सुस्त हो जाओगे, बिल्कुल नींद नहीं करोगे तो कब तक चलोगे। बैलेंस बहुत अच्छी ब्लेसिंग लेने का साधन है। तो आज मैं आपको तीन बातों का बैलेंस बताता हूं। एक, अपने इस ब्राह्मण जीवन में त्याग वृत्ति, त्याग में बैलेंस, वो किस चीज का। कई बार हमारा त्याग देख के लोग घबरा जाते हैं, कहते अरे ब्रह्मा कुमार बनेंगे, या नहीं खाना, या नहीं जाना, ये नहीं पहनना, वो नहीं करना, कितना बड़ा त्याग है भाई, मेरे से नहीं होगा, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर त्याग के साथ साथ मेरा भाग्य देखने लगे, कितना महान भाग्य है, अगर हम बाहर का नहीं खाते, हम बहुत सारी बातों से मुक्त हैं, फ्री हैं, कहीं दबते नहीं, कहीं झुकते नहीं। इसलिए अगर हमारी धारणाएं मजबूत हैं तो लोग अपने आप कहते हैं आप बहुत अच्छे हो, बहुत सेफ हो, बहुत स्वस्थ हो, बहुत अच्छा है। लेकिन त्याग ऐसा नहीं दिखाना, बिल्कुल मैं यह नहीं खाता हूं, मैं यहां नहीं पीता, यहां नहीं करता, कहीं कहीं पर देखा जाता है। समय, परिस्थिति, वायुमंडल, अपने आप को बहुत समझ के चलना, युक्ति युक्त होकर के चलना, युक्ति माना झूठ नहीं, बहुत युक्ति युक्त। अब किसी स्थान पर गए हो, किसी वीआईपी के पास गए हो और आप कहो मैं कुछ नहीं आ लूंगा, तो इतना वो डिस्टर्ब हो जाएगा जो कहेगा कि हम अछूत हैं क्या, आप हमारे पास नहीं खाते हो फिर हम आपके पास क्यों आएंगे, तुरंत ना कर देगा। इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कभी कुछ फल ले लिया, कभी उनका ड्राई फ्रूट ले लिया, कभी पानी ले लिया, कुछ ले लिया तो क्या हर्जा है, कोई ऐसा तो नहीं इंदिरा बंधन बाधा है बाबा ने, लेकिन बहुत अटेंशन रखना, जहां नहीं करना, जहां जरूरी नहीं है वहां नहीं झुकना है। इसलिए अगर हमारा ये त्याग सही दिशा में है, श्रीमत के अनुकूल है, तो उससे सेवा होती है, उससे दिखाई देता है बड़े भाग्यशाली हैं। तो त्याग के लिए तीन बातें मैं आपको कहता हूं, त्याग के लिए तीन बातें। एक तो बहुत निमित्त भाव चाहिए, जो कुछ साधन है सुविधाएं हैं उसमें अनासक्त भाव है, लेकिन जो कुछ हम कर्म कर रहे हैं वो कराने वाला करा रहा है, कर्तापन का भी ना आए मैंने किया, वो निमित्त भाव, बाबा आपने करा लिया, मेरा भाग्य बना दिया। मैंपन का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। कितनी भी बाबा के यज्ञ की सेवा करो, तन से मन से धन से समय से विशेषता से जो है आपके पास सब कुछ लगा दो भले बाबा के कार्य में, लेकिन दिखावा नहीं करो, बताओ नहीं इधर उधर मैंने इतना किया, मैं नहीं करता तो ये सेंटर नहीं बनता, मैं नहीं करता तो ये सेवा नहीं होती, मैं नहीं करता तो ये नहीं होता। कईयों को दिखावे की बड़ी आदत होती, मैं, और अगर उनकी थोड़ी सी महिमा नहीं हुई, थोड़ा सा कोई ने नहीं पूछा तो तुरंत डिस्टर्ब, मैंने इतना किया, देखो मैंने दीदी को इतना बड़ा सेंटर बना के दिया, अब मधुबन में आई तो मेरे को टेंट में सुला दिया, बस गई खुशी गायब। ये मैंपन कहां से आ गया, बाबा कहता मरो इसे, निमित्त निर्माण चित बन जाओ। बाबा के घर में दर में अगर दो पैर पृथ्वी भी मिल गई, बड़ा भाग्य है भगवान के दर में रहने। अगर आपके घर में भी पांच की जगह पर 15 लोग आ जाएं तो आप क्या करोगे, कहोगे भाई पट में सो जाओ, क्या करें, सोना यही है। तो ध्यान रखना पड़ता है, घर की बात है ये तो। इसलिए मैंपन कभी ना आए, निमित्त भाव हो, अनासक्त भाव हो और ट्रस्टीशिप की भावना हो, तब त्याग सफल होता है। बाबा ने इतना सब कुछ दिया, हमने कहा बाबा ये सब कुछ तेरा है, तन तेरा मन तेरा धन तेरा, ना लागे कुछ मेरा, भक्ति में तो ये कहते थे। अभी तो बाबा डायरेक्ट सुन लेता है, पहले सुनता नहीं था, अभी सुनता है तो कहता बच्चे जो तुमने कहा है इस वायदे को पालन किया है, कि कभी कभी सोचते हो बाबा को कहा तो था लेकिन मेरा है अधिकार रखते हैं, तो जब तेरा कह दिया है तो मेरेपन का अधिकार तो नहीं है, और तेरा है तो तेरे श्रीमत के सिवाय कहीं खर्च नहीं हो सकता, कहीं भी जा नहीं सकते, कुछ सोच भी नहीं सकते। जब तेरा कर दिया और उसने कहा बच्चे मैं तेरे को देता हूं, तुम अमानत समझ के संभालो, हमने तो बाबा को दिया सब कुछ समर्पित कर दिया, और बाबा ने कहा बच्चे तेरे को मैं देता हूं, रिटर्न करता हूं, तुम संभालना प्यार से भगवान की अमानत समझ करके। तो जब बाबा की अमानत है तो अमानत को तो बड़ा संभाल के रखा जाता है, कोई चोर ना आ जाए, कोई छीन न ले जाए, कुछ हो न जाए, उस पर बहुत ध्यान रहता है, भाई फलाने की अमानत रखी, उसको कोई नहीं नजर लगाना। तो बाबा की ये अमानत है, इसलिए तन भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता, मन भी इधर उधर की बातें नहीं सोच सकता, और जो धन दिया है बाबा तेरी सेवा में लगेगा और कहीं नहीं जाएगा, दिखावा नहीं, शोरबाजी नहीं, इधर उधर खर्चा नहीं कर सकते। कई लोग होते हैं ना, भाई इस लड़की की शादी करनी, इतना खर्चा करना, इतना करना, अब बाबा के बच्चे हैं, करना है जरूर करो जो करना है, लेकिन ज्यादा दिखावा नहीं, शोबाजी नहीं, किसी से भेंट नहीं करो, उसने इतना किया मैं इतना करूं, सिंपल सिटी रॉयल ब्यूटी, बहुत सिंपल रह करके त्याग वृत्ति से ट्रस्टीपन की भावना से हर कार्य करना। तो निमित्त भाव, अनासक्त भाव, खान पान रहन सहन कोई भी आसक्तियां नहीं। बहुत आसक्तियां होती है तो पता क्या होता, संग्रह वृत्ति बन जाती, इकट्ठा करेंगे ये चीजें ये चीजें ये चीजें। और कई लोग तो अपने घरों को गोदाम बना देते, घर नहीं रखते, गृहस्थी घर, घर नहीं रहते, घर तो आश्रम होने चाहिए जहां जाते ही शांति मिले, आश्रय मिले, प्रेम मिले। लेकिन घर में बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके हर जगह पर कुछ न कुछ टंगा है, लगा है, रखा है, बैठने की जगह नहीं, तो क्या हो गया, घर गृहस्थी बन गया, घर गोदाम बन गया। इसलिए ध्यान रखना अनासक्त वृत्ति, बहुत कम से कम खर्चे में, बहुत सिंपलिसिटी से घर को रखो, साफ स्वच्छ रखो, उसी में ब्यूटी है। ज्यादा चीजें इकट्ठे करने में शोभा नहीं है, दिखाई नहीं देता है त्यागी का आश्रम है, त्यागी का घर है। इसलिए भले सेवा केंद्र हो या घर हो, वो बहुत ज्यादा भभके नहीं चाहिए। ब्राह्मणों के घरों का श्रृंगार कोई भी इतना कलरफुल नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल, त्याग दिखाई दे, झलकना चाहिए, ये त्यागी लोगों के घर हैं। और तपस्या के लिए भी तीन बातें सुना देता हूँ, बड़ी बातें नहीं है। तपस्या माना ये नहीं आकर के रात भर बैठ जाना, ठीक है, हमारी कोई भी महान आत्माएं, दादियां, बड़े, कोई स्वास्थ्य के नीचे ऊपर बात होती है, कहते योग करो आकर के। आज भी बोला है ना 3 बजे आना योग करना, दादी जी जल्दी स्वस्थ होके आ जाएं, करो, अच्छी बात है, मना नहीं है, सब बहुत प्यार से बाबा को याद करो। लेकिन तपस्या 3 शब्दों से आधारित है, दिल में एक बाबा के सिवाय और कोई नहीं, दिल में एक दिलाराम है, मानो तपस्वी है, एक वृत्ता, वृत्ति में भी कोई देहधारी नहीं है अगर, तो वो तपस्वी है। अगर एक तरफ योग कर रहा और दूसरी तरफ किसी न किसी देहधारी की याद सता रही, कहीं लगाव है, कहीं झुकाव है, क्या तपस्या करेगा वो। तपस्वी माना एक वृत्ता, एक बाबा, दूसरा न कोई। दूसरा तपस्वी माना जिसके संकल्पों में बड़ी दृढ़ता है, दृढ़ता कहते, दृढ़ता ही तपस्या है। कोई भी संकल्प करो उसके लिए बिल्कुल अडिग हो जाओ, करना ही है, पास हो जाएंगे, तो वो तपस्या कहलाता है। और तीसरा, जितना हो सके मन बुद्धि को एकाग्र रखो, चंचल नहीं। बहुत वृत्तियां चंचल हैं, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, आंखों की हलचल, गर्दन की हलचल, एकाग्र हो जाए, बुद्धि की भी हलचल एकाग्र हो जाए, तपस्वी कहलाएंगे। दृष्टि भी स्थिर, संकल्प भी स्थिर, संस्कार भी स्थिर, एकाग्र, वो तपस्वी है। तो दृढ़ता है, एकाग्रता है, एक वृत्ता है, माना वो तपस्वी है। हमारे पास एक, जब मैं पहली पहली बार मधुबन में आया ना, तो दीदी जी हमारे बड़े रमणीकता से कोई कोई प्रश्न पूछती थी, तो मेरे से एक दिन पूछने लगी, तुम ब्रह्मा कुमार हो? हमने कहा हाँ दीदी ब्रह्मा कुमार हैं। बोली ब्रह्मा कुमार तो बहुत हैं, सफेद कपड़े पहन लिया, बैज पहन लिया, ब्रह्मा कुमार बन गए, लेकिन तपस्वी कुमार हैं, तपस्वी कुमार बन के दिखाओ। तब से लेकर के ध्यान रखता है कि सचमुच मेरी एक एक कर्म इंद्री इतनी शीतल हो जाए जो मैं तपस्वी मूरत बन जाऊं। यही तो तपस्या है ना, इंद्रिय जीत बन जाए, और क्या तपस्या करेंगे। कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाए, वृत्तियों की चंचलता समाप्त हो जाए, हलचल समाप्त हो जाए, कुछ नहीं चाहिए, तृप्त और संतुष्ट आत्मा जो है उसकी वृत्तियां शांत हो जाती है। वृत्तियों पर बहुत ध्यान देना, वृत्तियां बड़ी चंचल है, संकल्प को रोकें कोशिश करेंगे, रोक भी लेंगे, लेकिन अंदर अंदर वृत्ति बाहर भटकती रहेगी। वृत्तियों को कंट्रोल करने के लिए व्रत की जरूरत है, व्रत, व्रत लेते थे ना, निर्जल रहने का व्रत, आज हम खाना नहीं खाएंगे, आज पानी नहीं पिएंगे, वो व्रत तो बाबा कहता जरूरी नहीं है, वो तो हठ क्रियाएं हैं, लेकिन व्रत ये लो, एक बाबा के सिवाय कोई बुद्धि में नहीं आएगा, एक के सिवाय और कोई भी इस दिल में स्थान नहीं लेगा, ये व्रत है। दिल में एक दिलवाला ही रहेगा, उसका ही चिंतन रहेगा, उसी से सब संबंध निभाऊंगी, वो है व्रत। तो जब ये व्रत हम ले लेते हैं तो व्रतियां अपने आप कहां जाएंगी, भटकना बंद हो जाएंगी। तो ऐसे तपस्वी मूरत बन करके रहना, ये भी बहुत बैलेंस चाहिए। और तीसरी है सेवा, त्याग तपस्या और सेवा। सेवाओं का शौक ब्राह्मणों को बहुत है, खूब करते हैं, दिल से करते हैं। अभी तो आप लोग यहाँ आए हो, लेकिन शिवरात्रि पर इतनी अच्छी अच्छी चारों तरफ से सेवाओं की धूम मची हुई है। जहाँ देखो समाचार आता है, झंडा लहराने के बाद भी सब धर्म वालों को बुलाते हैं, मेले करते हैं, शिव मंदिरों में प्रदर्शनी करते हैं, आठ आठ दिन प्रभात फेरी निकालते, 4 बजे 5 बजे सबको जगाते हैं, जाकर सोते हुए जागो जागो भगवान आए हैं धरती पर, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब सेंटर्स पर हो रहा है। सेवाओं का शौक तो बहुत अच्छा है, लेकिन सेवाओं की सफलता के लिए सबसे पहली बात है बुद्धि बहुत बेहद और विशाल चाहिए, हदे नहीं। भले हमारी व्यवस्थाओं को ठीक रखने के लिए हदें कुछ एरियाज बांटी गई हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते वो दूसरों को भी नहीं करने देते। बड़ी मुश्किल ये है कि एक कर नहीं पाते, खुद भी नहीं करते, और दूसरे कहेंगे मेरी एरिया में तुम क्यों आ गया। ध्यान रखो, अगर वो सेवा रह गई तो सारा बोझ तेरे पर चढ़ जाएगा। इसलिए जो कर रहा है कर तो कर लेने दो, तुम्हारी एरिया तुम उठा के तो नहीं ले जाने वाला है। बहुत अंदर से वृत्ति बेहद की हो, विशाल हो, बाबा का पैगाम सबको मिले, संदेश मिल जाए, छिपे हुए लाल निकल आए, अपना जन्म से अधिकार ले लें, हमको क्या चाहिए। कौन सा मान मिल जाएगा, कौन सा शान मिल जाएगा, कौन से पैसे इकट्ठे करके साथ ले जाओगे, क्या करोगे। लेकिन अगर वो हदें बना करके रखी हैं तो टकराव की स्थिति संगठन को बदनाम करती है। इतनी बड़ी सेवाएं, एक धर्म, एक राज, एक मत, एक सतयुग की स्थापना करने वाली आत्मा, चैलेंज तो बहुत बड़ी है। कथनी करने में समानता भी है, ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत अंडरलाइन करना, कहीं भी हदें मैं बना लूं। दिल बहुत बेहद की चाहिए, सब बाबा के हैं, सब बाबा के स्थान हैं, बाबा का कार्य है, सफल हो, निर्विघ्न हो, झुकना पड़े, मरना पड़े, त्यागना पड़े, छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बाबा के नाम पर ये ना है कि शायद यहां भी दो पार्टी है, बहुत अटेंशन। हदे न बनाओ तब सफलता है सेवा में। और दूसरा है सेवा के अंदर रहम भाव, दया भाव। हर आत्मा दुखी है, हर आत्मा अशांत है, हर आत्मा भगवान से बिछुड़ी हुई है, उसको कैसे बाबा का बना दें, कैसे उसके लिए तन लगाएं, मन लगाएं, धन लगाएं, समय लगाएं, कुछ भी करें, इन सब को बाबा का पैगाम मिल जाए, जिस तरह से भी हो सके। रहम भाव अंदर से चाहिए, सबको परिचय मिले, सब अंधेरे में हैं, भटक रहे हैं, भगवान को नहीं जानते, वो आया है और चला जाएगा, पहचान नहीं पाएंगे, बेचारे रोएंगे, आंसू आएंगे। इसलिए रहम दिल, दयालु कृपालु बन करके दया करो इन आत्माओं पर, जो भगवान को अपने पिता को पहचान करके मुक्ति का वर्षा तो ले लें। जीवन मुक्ति के लिए तो कुछ ज्ञान सुनना पड़ेगा, सेवाएं करनी पड़ेंगी, धन लगाना पड़ेगा, मुक्ति तो मिल जाए, भगवान को याद तो करें, पहचान तो लें। रहम दिल बनो, दयालु कृपालु बनो। और तीसरी बात है मास्टर दाता। बहुत अंडरलाइन करने की बात मैं आपको सुना रहा हूं, अगर लेने की भावना है, कई बार सेवाओं को इस रूप से हम कर लेते हैं, इसकी सेवा होगी तो ये मदद मिलेगी, इस वीआईपी को अगर हम ज्ञान दे देंगे तो हमको मकान दे देगा, जमीन दे देगा, ये कर देगा, वो क्या देगा, क्यों उससे हद की इच्छा रख करके चल रहे हो। जो बाबा को कराना होगा उसे कराएगा, आप निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करो। बहुत दातापन का भाव चाहिए। बाबा आपने मुझे इतना दिया है, जो जरूरी होगा दे देगा, जो जरूरी होगा वो आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन आवश्यकताएं भी इतनी बड़ी न हो जाएं विस्तार की, जो चाहनाओं का रूप बन जाए, चाहिए चाहिए चाहिए, परेशान हो जाएंगे आप, एक पूरी होगी 10 और खड़ी हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहता बच्चे दाता बनो, मैंने तुमको इतना दिया है, ज्ञान धन दिया है, गुणों का धन दिया है, शक्तियों का धन दिया है, इनका दान करो दान करो दान करो। आप हम सभी को ये ध्यान रखना है, सेवा के बीच में सदा यही भावना रहे कि मुझे देना है, बस जो बाबा आपने मुझे दिया है, मैं अपने मुख से, आवाज से, मैं अपनी दृष्टि से, मैं अपने व्यवहार से, अपनी मनसा शक्ति से इन सब को शांति दूं, शक्ति दूं, पवित्रता का वरदान दूं, देता जाऊं बस। कभी भी किसी से लेने की कामना नहीं है, लेने की कामना अगर रहेगी तो उनको बाबा कहता है जहां लेने की कामनाएं है ना, वहां उस आत्मा से कोई भी बात में सामना नहीं हो सकता, माया से भी सामना नहीं हो पाता, कामनाएं रखी हैं। इसलिए जहां सब इच्छाएं बाबा ने हमारी पूरी की, कोई कामना नहीं, आत्मा तृप्त है, भरपूर है, वो आत्मा सेवा में सदा सफलता को पाती है। किसी हद की इच्छा लेकर के सेवा करने नहीं जाना, बेहद में रहो, बाबा का बने, अपना अधिकार ले, वर्षा ले, मुझे इसे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतनी भावना से अगर सेवा करेंगे तो ये बैलेंस जो है त्याग तपस्या सेवा, इसके आधार से बहुत ब्लिसफुल लाइफ बन जाएगी और बहुत अच्छी बाबा की ब्लेसिंग्स मिलेंगे। इसलिए सहज मार्ग है, सहज पुरुषार्थ है, बहुत भारी करके टेंशन में आकर के ये करना है ये करना है ये करना है, तंग नहीं हो, परेशान नहीं हो, सरल पुरुषार्थी बनो, सुख देना है सुख लेना है बस, संतुष्ट रह के सबको संतुष्ट करना है, मर्यादा की लकीर के अंदर रह करके करना, तो मर्यादा की लकीर पर अगर चलते हुए संतुष्ट करेंगे तो डबल दुआएं मिल जाएंगी, एक बाबा की दुआएं भी मिलेंगी, एक परिवार की भी मिल जाएंगी। तो हम सब बाबा की दुआएं लेते चलें, तीन खाते फुल करो, एक अच्छे पुरुषार्थ से, यथार्थ पुरुषार्थ से प्रारब्ध अच्छी बन जाए, दूसरा हाँ जी करके, सहयोग दे करके, बैलेंस रख करके, श्रीमत पर चल करके बाबा की दुआएं मिले, परिवार की दुआएं मिले, और तीसरा इतना गुप्त रीति से कार्य किया जाए, दान किया जाए, धन दान किया जाए, ताकि उसकी पुण्य की कमाई हमारे साथ जाएगी, करने के बाद उसका वर्णन चिंतन न हो, उसको कहते हैं महादानी, महादान पुण्य दान। तो जब दान करते हैं तो दान ही पुण्य बन जाता है, तो इसलिए पुण्य की पूंजी साथ जाती, दुआएं इस समय संगम पर साथ देती, मदद करती, और पुरुषार्थ अच्छा है तो प्रारब्ध अपने आप बनती है, प्रारब्ध के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी दुआएं लेते चलो, दुआएं देते चलो, कोई बद्दुआ एक अगर मिल जाए कभी तो और 10 दुआएं दे दो, सुख दो सुख लो, ठीक है, ओम शांति। अभी भाई 5 मिनट कोई उठना नहीं, हम विशेष अपनी दादी जी का आह्वान करेंगे, दादी जी को इतनी सकाश दो, वो तो बहुत योगी आत्मा है, बाबा के साथ है, उसको योगदान हम क्या देंगे, लेकिन एक शुभ संकल्प है कि दादी जल्दी से जल्दी एकदम फ्रेश होकर के आप हमारे बीच आओ, और आपकी दृष्टि से, आपके मस्तक से हम बाबा का दर्शन कर लें, ठीक है। तो आप हम सभी बाबा की तरफ से दादियों को बहुत स्वस्थ रहने की सकाश देंगे, दुआएं देंगे।